नमस्कार भारत, शनिवार 30 जनवरी, मैं हूं निखिल रंजन। रोहित वेमुला के जन्मदिन पर आधी रात को छात्रों ने किया कैंडल मार्च। राहुल गांधी भी पहुंचे, मार्च से पहले वाइस चांसलर गए छुट्टी पर। हेमा मालिनी को मुंबई में कौड़ियों के भाव मिली जमीन। आरटीआई कार्यकर्ता ने उजागर किया मामला। पाकिस्तान में हिंदू परिवार की लड़कियों को अगवा करने का सिलसिला जारी। कानून बनाने का काम अब तक खटाई में।
छोटी उम्र में उनको किडनैप करके उनको फिर जोरी जबरदस्ती, जो लोकल वहाँ के उनके वडेरे हैं या उनके बड़े सरमाएदार हैं, उनको फोर्स कन्वर्जन किया जाता है। तो हमारी सारी कम्युनिटी में इसकी बड़े वो अनसेक्यूर।
संयुक्त राष्ट्र में सीरिया का गृह युद्ध खत्म करने पर बातचीत में शामिल होने पर विपक्षी गुट राजी। अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में रोहित वेमुला के जन्मदिन के मौके पर छात्रों ने आधी रात को कैंडल मार्च निकाला और उसके बाद धरने पर बैठ गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस मार्च में शामिल हुए और फिर छात्रों के साथ धरने पर बैठे। रोहित वेमुला ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के कारण इसी महीने खुदकुशी कर ली थी। देश भर के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के इस रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे। सीरिया के प्रमुख विपक्षी दल का कहना है कि वो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में जिनेवा में हो रही शांति वार्ता में शामिल होगा। हाई नेगोशिएशंस कमेटी नाम के संगठन ने इस बात की पुष्टि की। हालांकि कमेटी ने कहा कि वो सीरियाई सरकार से नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि से बात करेगा। इससे पहले संगठन ने कहा था कि वो जिनेवा शांति वार्ता में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक कि सीरिया के रिहायशी इलाकों में बमबारी बंद नहीं हो जाती। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो हिलरी क्लिंटन की कुछ निजी ईमेल्स को जारी नहीं करेगा क्योंकि उसमें सर्वाधिक गोपनीय जानकारी दर्ज है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि खुफिया विभाग के अनुरोध पर यह फैसला किया गया है।
I can confirm that as part of this monthly FOIA production of former Secretary Clinton's emails,
मैं पुष्टि कर सकता हूं कि पूर्व विदेश मंत्री क्लिंटन के ईमेल्स को जारी करने के संदर्भ में विदेश मंत्रालय 22 दस्तावेजों में मिले कुल 7 ईमेल्स को सार्वजनिक करने से इनकार कर रहा है। इन दस्तावेजों को खुफिया विभाग के कहने पर अपग्रेड किया जा रहा है क्योंकि इनमें अति गोपनीय जानकारी है। जिस वक्त ये दस्तावेज भेजे गए थे तब उन्हें क्लासिफाइड की श्रेणी में नहीं डाला गया था। ये थे जॉन किर्बी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। खाड़ी में उड़ते एक अमरीकी मालवाहक विमान के ऊपर एक ईरानी ड्रोन के उड़ने की अमरीकी सेना ने निंदा की है। इसी महीने नौसेना की एक प्रवक्ता ने ईरानी ड्रोन की इस उड़ान को असामान्य और अव्यावसायिक बताया, जबकि ईरानी नौसेना के कमांडर ने इस कार्रवाई को बहादुरी का कारनामा कहा। ब्रितानी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके कुछ सबसे कुशल युद्धपोतों की मरम्मत और नवीनीकरण करना होगा क्योंकि वो बार बार खराब हो जाते हैं। रॉयल नेवी ने यह स्वीकार किया कि सभी टाइप 45 डिस्ट्रॉयर्स में नए जनरेटर लगवाने की ज़रूरत है। आलोचकों का कहना है कि इन युद्धपोतों की मरम्मत में अरबों डॉलर्स लगेंगे। इस क्षेत्र में कंजूसी करने के लिए भी रक्षा मंत्रालय की निंदा हुई है। एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी का कहना है कि करीब 30वीं सदी अफगानिस्तान पर या तो तालिबान के चरमपंथियों का कब्जा है या फिर उनका दबदबा। कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के इंस्पेक्टर जनरल जॉन सॉपको ने कहा है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात बदतर हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। आज 30 जनवरी है। भारत को आजादी मिलने के 6 महीने के भीतर यानी 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ऐसी घटना के बाद उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा, ये सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रेहान फजल आज विवेचना में आपको उस पल से रूबरू कराएंगे, लेकिन अभी नहीं बल्कि दूसरी सभा विश्व भारती में। फिलहाल बात करते हैं उस रात की जो अभी अभी खत्म हुई है। बीती रात को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोई नहीं सोया। ठीक मध्यरात्रि में जब तारीख बदली तो रोहित वेमुला के साथ ही परिवार वाले और दूसरे सैकड़ों छात्र हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकल पड़े। रोहित वेमुला याद है ना, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वही छात्र जिन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के कथित भेदभावपूर्ण रवैये से तंग आकर खुदकुशी कर ली। आज उनका जन्मदिन है। छात्रों के इस मार्च में शामिल होने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। इससे पहले एक अहम बात यह भी हुई है कि यूनिवर्सिटी के अंतरिम वाइस चांसलर विपिन श्रीवास्तव छुट्टी पर चले गए। आइए सुने क्या हुआ है वहां पूरी रात इमरान कुरैशी से।
बीती रात जब पूरा भारत सो रहा था तब हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में गूंज रही थी ये आवाजें और सड़कों पर था हाथों में मशाल की तरह मोमबत्ती को उठाए छात्रों का हुजूम। वक्त था रात के ठीक 12 बजे। कुछ दिन पहले खुदकुशी करने वाले रोहित विमला का आज जन्मदिन है और वो अगर जिंदा होते तो आज 26 साल की उम्र पूरी होती। इस हुजूम में जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो गए तो छात्रों का उत्साह और बढ़ गया। हालांकि इस जमावाड़े से कुछ दूर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का एक दल राहुल गांधी के यहाँ आने के विरोध में नारे लगा रहा था। राहुल गांधी ने यहाँ पहुँचने के बाद कोई भाषण तो नहीं दिया लेकिन छात्रों ने जब स्मृति ईरानी मुर्दाबाद कहा तो उन्हें ऐसा करने से रोका जरूर।
स्मृति ईरानी मुर्दाबाद।
यूनिवर्सिटी कैंपस में रोहित के साथ ही उनके परिवार के लोग और दूसरे आधी रात से आज शाम 6 बजे तक धरने पर बैठे हैं। इनमें से कुछ छात्र भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में से एक छात्र ने कहा,
उनके साथ काफी संख्या में लोग अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे जिससे प्रशासन पर दबाव पड़े और हमारी डिमांड जो जल्द से जल्द मांग ली जाए।
इस बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंतरिम कुलपति प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी जगह केमिस्ट्री के प्रोफेसर प्रियस्वामी को अंतरिम कुलपति बनाया गया है। सीनियोरिटी के लिहाज से प्रोफेसर श्रीवास्तव के बाद प्रोफेसर प्रियस्वामी का ही नंबर है। प्रोफेसर श्रीवास्तव 4 दिन की छुट्टी पर गए हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों को प्रोफेसर प्रियस्वामी के नाम से कोई आपत्ति नहीं है। रोहित वेमुला और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले यूनिवर्सिटी के अपारो पुदिले पहले ही लंबी छुट्टी पर जा चुके हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के जन्मदिन पर छात्रों का प्रदर्शन। इधर भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी को मुंबई में सरकारी जमीन कम दाम पर आवंटित करने का मामला सामने आया है। ये जानकारी सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत हासिल दस्तावेजों से मिली है। मुंबई से अश्विन अघोर से सुनिए पूरा ब्यौरा।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा भाजपा सांसद हेमा मालिनी को करोड़ों की जमीन कौड़ियों में आवंटित करने को लेकर राजनीति खासी गरमा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई के ओशिवारा उपनगर में 2000 वर्ग मीटर जमीन केवल 70,000 रुपये के सालाना शुल्क पर हेमा मालिनी के प्रस्तावित नृत्य अकादमी को आवंटित कर दी गई है। यह मामला तब उजागर हुआ जब सूचना अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई उपनगर जिलाधिकारी के कार्यालय से इस आवंटन से जुड़ी जानकारी मांगी। इस बारे में अनिल गलगली ने BBC को बताया,
जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है ना, जो इसके पहले भी 5 गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजन लेकर मुंबई की जो ओपन स्पेस और जो गार्डन को प्राइवेट NGO को लेने का काम किया था, इसकी वजह से आज बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी हो रही है। और खुद मुख्यमंत्री ने बीच में BNC के अंदर में जितने भी ऐसे प्लॉट थे ना उसे निकालने का डिसीजन लिया है और एक जगह की ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
यह मामला सामने आते ही कांग्रेस ने भाजपा की आलोचना करते हुए उसे चुनाव प्रचार के दौरान किए गए सिस्टम बदलने के वादे की याद दिलाई। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा,
देखिए जिस तरह से नीति जो गवर्नमेंट की रही है उसको हम बदलेंगे, ये शुरुआत से मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो कह रहे थे, उनके सारे मंत्री उसी के बारे में कह रहे थे, लेकिन उस नीति को बदलने की बात तो निश्चित तौर पर नहीं हुई है अब तक 1 साल होने के बावजूद। और जहाँ तक इस प्लॉट के आवंटन की बात है तो अगर वो नीति बदली होती तो ये राज्य शासन अपने इस प्लॉट की कीमत ज्यादा नहीं सकता था।
लेकिन भाजपा की ओर से इस पूरे मामले को कानूनन बताते हुए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से साफ इनकार किया गया। महाराष्ट्र के राजस्व विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम एक विज्ञप्ति जारी कर यह दावा किया गया कि इस आवंटन में किसी भी प्रकार की कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। महाराष्ट्र भाजपा के मुख्य प्रवक्ता माधव भंडारी ने BBC को बताया,
एक तो ऐसा है कि ये प्रस्ताव जो था वो बहुत पुराना था और कांग्रेस की सरकार के जमाने में ही इसके ऊपर काम हो रहा था और बीच में जब हेमामालिनी जी भाजपा के साथ एक्टिव हो गई तब कांग्रेस ने उसको रोक रखा था। आज वो अगर सामने आया है तो पुराना प्रपोजल था वो सामने पूरा हो गया, ऐसा खैर हो सकता है।
ये थे माधव भंडारी। इस बारे में जब हेमा मालिनी से संपर्क किया गया तब उन्होंने कहा कि वह इस वक्त मुंबई में नहीं है और इस मामले पर मुंबई आकर ही कोई टिप्पणी करेंगी। बीबीसी हिंदी के लिए मुंबई से अश्विन अघोर।
बीबीसी इंडिया बोल। स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और डिजिटल इंडिया, या फिर पीने का साफ पानी, गांव देहात में स्कूल और अस्पताल, भारत को पहले क्या चाहिए, सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? यही है शनिवार 30 जनवरी के इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें इन नंबरों पर 1811-7000 और 1800-102-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आप भी जरूर फोन करिएगा। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ। और अब आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं अखबारों पर नजर। प्रगति आ चुकी है अखबारों के साथ, बताइए प्रगति क्या है अखबारों में आज?
जी निखिल, आज जो सभी अखबारों में खबरें हैं पहले पन्ने पर वो मैं पहले पढ़ देती हूँ कि सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि मेलबर्न में अभी हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी उपलब्धि हासिल की। सुबह महिला क्रिकेट टीम T20 में जीती और दोपहर में मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्ज़ा ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीती और शाम तक धोनी के टीम ने टीम जीत गई, उसने जलवा दिखाया।
तीन
हम एक दिन में प्रतियोगिताएं जीते। और आप विधायक दंगा भड़काने में गिरफ्तार, विकासपुरी के विधायक महेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। जीका पर सरकार सतर्क हो गई है, विश्व की अन्य सरकारों की तरह भारत सरकार भी जीका पर सतर्क हो गई है। IS के 3 भारतीय हमदर्द वापस भेजे गए, ये संयुक्त अरब अमीरात ने पकड़े थे और उनको भारत वापस भेज दिया है। शीर्ष नौकरशाही में बड़ा बदलाव किया गया है, 10 मंत्रालयों और विभागों के सचिव बदले गए हैं। दूरसंचार सचिव को अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय में भेज दिया गया है। इसके बाद जो विशेष खबर है एक हिंदुस्तान में, वो गांधी जी पर एक लेख है, धीमी पत्रकारिता का सत्याग्रही संपादक, ये संपादकीय है, बहुत रोचक लेख है। इसके अलावा जनसत्ता में भी एक खबर है कि गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक हत्यारे की कहानी, गोवा में नाथुराम गोडसे की पर लिखी हुई किताब का विमोचन आज ही के दिन किया जा रहा है, तो इस पर विवाद हो रहा है। जागरण में खबर है कि 70% बढ़ी टोल टैक्स की दरें, दिल्ली में 70% टोल टैक्स की दरें बढ़ गई हैं और DDCA ने दिल्ली को किया शर्मसार, मजबूर होकर BCCI को T20 मैच दिल्ली से रांची हस्तांतरित करना पड़ा। नई दुनिया में बीटिंग रिट्रीट की एक भव्य तस्वीर है और रिपोर्ट में है कि पहली बार शामिल हुए इस रिट्रीट में शास्त्रीय वाद्य यंत्र। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार पड़ी है, शिकायत आई है तो निजी स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार, हाईकोर्ट ने ये दिल्ली सरकार से पूछा है, ये खबर नई दुनिया की है।
बहुत शुक्रिया प्रगति सक्सेना अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। सीरिया में शांति बहाल करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयास कल नाकाम होते नजर आ रहे थे क्योंकि राष्ट्रपति असद के प्रतिनिधिमंडल के अलावा सीरियाई विपक्ष का कोई भी दल युद्ध विराम के लिए शुरू की गई इस बातचीत में शामिल नहीं था। लेकिन सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि स्टेफान डी मिस्तूरा ने अनिश्चय की हालत में ही इस बातचीत की शुरुआत की और अब एक उम्मीद की किरण भी जग गई है। विपक्षी दलों का एक धड़ा कह रहा है कि वो इस बातचीत में हिस्सा लेगा। पूरा ब्यौरा सुनिए प्रगति सक्सेना से।
5 साल से चल रहे युद्ध और तबाही ने सीरिया की विरासत और नई पीढ़ी के जोश दोनों को तोड़ दिया है। चरमपंथी दल इस्लामिक स्टेट का कहर, गठबंधन सेना और रूस के हवाई हमलों को झेलते इस देश में शांति बहाल करने की 2 अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि स्टेफान डे मिस्तूरा ने एक बार फिर कोशिश की है परस्पर विरोधी दलों को एक मंच पर लाकर बातचीत से इस समस्या को सुलझाने की। पहले तो इस बात पर संशय बना रहा कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN किन किन विपक्षी दलों को बातचीत में शामिल होने का निमंत्रण देगा, फिर सभी विपक्षी दलों के इसमें शामिल ना होने से हताशा और अनिश्चय ने फिर जोर पकड़ा। लेकिन UN प्रतिनिधि मिस्तूरा ने सिर्फ राष्ट्रपति असद के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर ही कल जिनेवा में इस बातचीत की शुरुआत की। उम्मीद का नजरिया और अथक कोशिशें रंग लाईं और आज सुबह सीरियाई विपक्ष के एक अहम धड़े हाई नेगोशिएशंस कमेटी यानी HNC ने बातचीत में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। स्टेफान डे मिस्टूरा।
We have been strongly suggesting to them that the best way to actually discuss the implementation.
मिस्टूरा कह रहे हैं, हम उन्हें बार बार ये सुझाव दे रहे हैं कि शांति के लिए किसी भी शर्त को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है इस पर यहाँ हमारे साथ चर्चा करना, और मेरा मानना है कि वो इस सुझाव पर गंभीरता से सोच रहे हैं और रविवार तक वो हमारे साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं ताकि हम शांति कायम करने के लिए सीरिया के भीतरी दलों के बीच वार्ता में आगे बढ़ सकें। इसके कुछ ही देर बाद HNC ने इस बात की पुष्टि की कि वो देश में गृहयुद्ध खत्म करने पर हो रही इस वार्ता में शामिल होगा। सीरियन नेशनल कोअलिशन के पूर्व अध्यक्ष हादी अल बाहरा ने BBC को बताया,
The HNC has decided to send a small delegation to discuss.
HNC ने फैसला किया है कि वो इस वार्ता में हिस्सा लेने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल जिनेवा भेजेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है UN सुरक्षा परिषद के मानवीय मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव 2254 को पूरी तरह से लागू करना। अगर मानवीय मुद्दे पर कुछ प्रगति होती है तो हम शांति स्थापित करने पर भी बातचीत करेंगे। हादी अल बाहरा के शब्द। हादी अल बाहरा ने कहा कि शुरुआत में UN की मध्यस्थता में ही बातचीत होगी और अगर ये सफल होती है तो दूसरे चरण में विपक्षी दल सीधे सरकार के प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे। चूंकि संयुक्त राष्ट्र की शांति बहाल करने की ऐसी दो कोशिशें असफल हो चुकी हैं, इसलिए फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि ये वार्ता सफल होगी ही, लेकिन हाँ, उम्मीद जरूर की जा सकती है कि ये वार्ता सीरिया में अमन चैन की वापसी की तरफ उठाया गया एक सकारात्मक कदम होगा।
संयुक्त राष्ट्र में सीरिया पर बातचीत में शामिल होगा विपक्ष भी। रिपोर्ट सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इधर पाकिस्तान में बीते दिनों हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर अगवा करने और उन्हें जबरन मुसलमान बनाने के कई मामले सामने आए हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सिंध विधानसभा में एक कानून को पारित कराने की कोशिश की जा रही है जो फिलहाल सफल नहीं हो रही। कराची से BBC उर्दू संवाददाता रियाज सुहेल की रिपोर्ट सुना रहे हैं संदीप सोनी।
पाकिस्तान के सिंध सूबे के दूसरे सबसे बड़े शहर हैदराबाद में प्रेस क्लब के बाहर एक कोने में एक पुरुष 3 महिलाओं और 2 बच्चियों के साथ फुटपाथ पर बैठा है जिसके हाथ में एक लड़की की तस्वीर है। इस व्यक्ति का नाम अज्जू मेघवाड़ है जिसकी 13 साल की बेटी राधिका को 2 हफ्ते पहले तब अगवा कर लिया गया था जब वो और उसकी पत्नी मजदूरी पर गए हुए थे।
पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, वो ऐसे ही करेंगे ना, मुसलमान करके भी वो बिठा दे, अभी बोले हम निकाह कर दिया, हम क्या करें, गरीब बंदे हम, हमारे को कुछ ना कुछ इंसाफ दो।
अज्जू और उसकी पत्नी किसान थे लेकिन बेहतर जिंदगी की चाह में हैदराबाद आ गए जहां वो दाल मिल में 40 रुपए प्रति घंटा और उसकी पत्नी चूड़ी फैक्ट्री में 25 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी करते थे। पत्नी अब भी मजदूरी पर जाती है लेकिन अज्जू अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटक रहा है।
पुलिस बोलती है हमारे को पैसा दो, बस पैसा दो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। फिर अभी कटवाई है वो इधर जो जलसाल निकाला था, फिर उसने फिर भी सुबह निकाली FR कटी, अभी FR कटने से 6-7 दिन हो गए, अभी तो कुछ नहीं कर रहा है।
हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर उमरकोट जिले के समारोह में गन्ने के खेतों के बीच खाली मैदान में 4 घर बने हुए हैं। उन्हीं घरों में से एक घर में 13 साल की नीला कोहली अपने भाई और भाभी के साथ रहती हैं। नीलां को बीते साल 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गए थे। उन्हें एक मदरसे में और बाद में किसी घर में रखा गया था जहां से वो किसी तरह बच निकली और उन्होंने कोट गुलाम मोहम्मद शहर में एक घर में जाकर पनाह ली। नीलां की भाभी ने बताया कि हमलावरों ने उस घर का भी घेराव किया था।
उसने भागकर मालहियों के घर में पनाह ली जहाँ खोखरों ने घेराव करके उसे मारा पीटा। पुलिस ने आकर बचाया और अदालत ने हमारे हवाले किया लेकिन वो अब भी डरती है।
नीला ने अदालत में दिए अपने बयान में कहा कि उन्हें अगवा करने के बाद एक कागज पर अंगूठे के निशान लिए गए और उन्हें बताया गया कि तुम मुसलमान बन चुकी हो, तुम्हारा निकाह भी हो गया है, लेकिन नीला इस बात को नहीं मानती और बाद में उन्हें उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। नीला को अभी भी डर है कि उन्हें दोबारा अगवा किया जा सकता है। उनके घर से कुछ ही दूर दरगाह गुलजार खलील है जहां हर साल कई हिंदुओं का मजहब बदला जाता है। इस मदरसे के प्रमुख पीर अयूब जान सरंदी का कहना है कि वो जबरन किसी का मजहब नहीं बदलते।
लोग रदाकारन तौर पे हमारे पास आते हैं, हम उन्हें मुसलमान करते हैं, कलमा पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जब वावेला होती है तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि अब आप कोर्ट में जाएं। फिर हमारे जितने भी लोग मुसलमान हुए हैं वो उसमें सब के सब 100% हमने कोर्ट की मार्फत उनको सर्टिफिकेट जारी। लेकिन अगर कोई हमारे पास आता है मुसलमान होने के लिए, हम उनका एक मुख्तसर एक इंटरव्यू करते हैं, फिर जब हमें यकीन होता है कि ये सिद्ध के दिल से मुसलमान होना चाहते हैं, पीछे क्या असबाब अवामिल है कुछ भी है उससे हमें वास्ता नहीं है।
पाकिस्तान में अधिकतर हिंदू सिंध सूबे में रहते हैं। हिंदू समुदाय का आरोप है कि उनकी नाबालिग लड़कियों का अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन करके निकाह पढ़ा दिया जाता है और उन्हें सुरक्षा देने के लिए कोई कानून नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए सिंध विधानसभा में एक कानून पेश किया गया जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया है। प्रस्तावित कानून में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है और अदालत को इस तरह का मामला 90 दिन के भीतर निपटाना होगा। पीर अयूब जान सरंदी ऐसे किसी कानून का विरोध करते हैं।
कानून को हम काला कानून कहेंगे, ये कानून गलत है। जिसने भी इसमें ये हरकत की उसको हम ये कहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे बोरा बिस्तर हम उठवा देंगे।
सिंध विधानसभा में इस प्रस्तावित कानून को पेश करने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता नंद कुमार गोकलानी का कहना है कि सिंध से हिंदुओं के पलायन और उनकी सुरक्षा के लिए इस विधेयक को पारित किया जाना जरूरी है।
छोटी उम्र में उनको किडनेप करके उनको फिर जोरी ज़बरदस्ती जो लोकल वहाँ के उनके वडेरे हैं या उनके बड़े सरमायेदार हैं उनको फोर्स कन्वर्जन किया जाता है। तो हमारी सारी कम्युनिटी में इसकी बड़े वो अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे रिसेंटली बड़े माइग्रेशन यहाँ से हो रही है। 26 जनवरी को ये बिल पास होना था लेकिन फिर स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं इसको कमेटी में भेजते हैं। उसने भी माइनॉरिटी राइट्स माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी कहलाती है स्टैंडिंग कमेटी वहाँ रेफर किया है, वहाँ पे हम मेंबर हैं। मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि वहाँ से जल्दी जल्दी मीटिंग करके हम पास करा के ताकि असेंबली में ले आएं ताकि कानून का ये हिस्सा बने।
पाकिस्तान में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और कानून बनाकर इसे रोकने की बात भी होती रही है। अब देखना यह है कि ये प्रस्तावित कानून वाकई कानून बनता है या बात आई गई हो जाती है।
कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप सोनी। और अब बात कर लेते हैं उन खबरों की जिन पर आज पूरे दिन रहेगी हमारी नजर।
आज महात्मा गांधी की 68वीं पुण्यतिथि है। देश भर में तमाम संगठन और संस्थाएं राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के ऊना का दौरा करेंगी। हिमाचल के अपने 3 दिवसीय दौरे पर वो हमीरपुर और कांगड़ा भी जाएंगी। इटली के एक समलैंगिक सिविल यूनियंस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए लोग प्राचीन रोम स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्टेडियम सर्कस मैक्सिमस में इकट्ठा होंगे। फ्रांस की सरकार ने देश में आपातकाल 3 और महीने तक बढ़ाने का इरादा किया है। इसके खिलाफ 111 संस्थाएं और 19 यूनियंस पेरिस में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उधर लंदन में हजारों लोग सोशल हाउसिंग कानून में सुनियोजित बदलाव लाने का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस कानून के तहत कम आय वाले नागरिकों को आवास की सस्ती सुविधाएं उपलब्ध हो जाती थी। मकानों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सरकार इस कानून में बदलाव लाना चाहती है। जिनेवा में सीरिया के गृहयुद्ध को खत्म करने पर हो रही बातचीत का आज दूसरा दिन है। ये बातचीत कल यानी गुरुवार को शुरू हुई जबकि इस बैठक में सीरिया के अहम विपक्षी दल शामिल नहीं हुए। हालांकि विपक्ष के एक प्रमुख संगठन का कहना है कि वो इस बैठक में हिस्सा ले सकता है।
और अब नमस्कार भारत में वक्त हो चला है हमारे साप्ताहिक पेशकश खेल खिलाड़ी का। सुनिए आदेश कुमार गुप्त से।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत टेनिस से।
The dynamic duo. Well done to our champions in the Wimbledon doubles for 2016, Sanya Mirza and Martina Hingis.
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के विजयी अभियान को कोई नहीं रोक सका और इस जोड़ी ने कल महिला युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। सानिया और हिंगिस ने फाइनल में 7वीं वरीयता हासिल जोड़ी चेक गणराज्य की आंद्रिया हलवाचकुआ और लूसी हरडेका को 7-6, 6-3 से हराया। इससे पहले सानिया हिंगिस की जोड़ी ने पिछले साल विंबलडन और अमरीकी ओपन में भी खिताब अपने नाम किए थे। इस तरह जोड़ी का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब रहा। उनके अलावा कल सबकी नजरें पुरुष एकल मुकाबले पर भी थी, जहां दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी बरे ने कनाडा के मिलोस रोनिक को 4-6, 7-5, 6-7, 6-4, 6-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। फाइनल में उनका सामना शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। और अब बात क्रिकेट की।
एक और विकेट किया अपने नाम आखिरी गेंद पे जसप्रीत बुमराह ने, और इसी के साथ ये 3 मैच का श्रृंखला जीत चुकी है भारत 2-0 से।
आखिरकार भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लंबे समय बाद कोई सीरीज अपने नाम की, और ऐसा तब हुआ जब भारतीय क्रिकेट टीम ने कल मेलबोर्न में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से हरा दिया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर पहले तो रोहित शर्मा के 60, शिखर धवन के 42 और विराट कोहली के नाबाद 59 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 184 रन बनाए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट पर 157 रन के स्कोर पर रोक दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ही कुछ जमकर बल्लेबाजी कर सके और उन्होंने 48 गेंदों पर 74 रन बनाए। भारत के जसप्रीत बुमराह ने 37 रन देकर 2 और रविंद्र जडेजा ने 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है।
और धोनी ये पहले भारतीय कप्तान बने जिन्होंने 2 श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता है।
मैच समाप्त होने के बाद भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा के उस कैच की तारीफ की जो उन्होंने शेन वाटसन का पकड़ा।
अगर आप बोलिंग कर रहे हैं, आप अपना खुद का कैच नहीं पकड़ेंगे तो आप खुद को ही ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा आदमी कोई भी उस प्ले में नहीं आता है। एंड ही इज अ गुड फील्डर, इतना अच्छा फील्डर है कि उसको ऐसे कैच अक्सर अगर उसके आसपास से जाए तो उसे पकड़ना चाहिए। अगर सिर्फ गेम को देखें तो बहुत ही अच्छा कैच है।
उधर महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने कल ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 10 विकेट से करारी मात दी। बारिश से प्रभावित इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने निर्धारित 18 ओवर में 8 विकेट खोकर 125 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 10 ओवर में जीत के लिए 66 रनों का लक्ष्य मिला, जो उसने कप्तान मिताली राज के नाबाद 37 और स्मृति मंधाना के नाबाद 22 रन की मदद से 9.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 3 मैचों के सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। और अब बात बैडमिंटन की। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल शीर्ष वरीयता हासिल भारत के श्रीकांत ने मलेशिया के गोह सुन हुयात को 21-17, 18-21, 24-22 से हराया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। उनके अलावा महिला युगल वर्ग में भारत की ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
तो ये था खेल खिलाड़ी इस हफ्ते का, और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में रोहित वेमुला के जन्मदिन के मौके पर छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, शामिल हुए राहुल गांधी भी। सीरिया के प्रमुख विपक्षी दल हाई नेगोशिएशंस कमेटी ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में जिनेवा में हो रही शांति वार्ता में होगा शामिल। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो हिलरी क्लिंटन की कुछ निजी ईमेल्स को जारी नहीं करेगा क्योंकि उसमें सर्वाधिक गोपनीय जानकारी दर्ज है। खाड़ी में उड़ते हुए एक अमरीकी मालवाहक विमान के ऊपर एक ईरानी ड्रोन के उड़ने की अमरीकी सेना ने निंदा की है। ब्रितानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके कुछ सबसे कुशल युद्धपोतों की मरम्मत और नवीनीकरण की ज़रूरत है। एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी के मुताबिक करीब 30वीं सदी अफगानिस्तान पर या तो तालिबान के चरमपंथियों का कब्जा है या फिर उनका दबदबा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अमरीकियों और यहां तक कि अफगान अधिकारियों के लिए भी देश भर में घूमकर पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों की निगरानी करना लगभग नामुमकिन है। डच सरकार ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमान सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के लड़ाकुओं को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। नमस्कार भारत में इतना ही, एक घंटे बाद विश्व भारती में फिर मिलते हैं। नमस्कार।